وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. اس طرح ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ وہ ایک دوسرے سے سوال کریں. اس ریزن سے نہیں اٹھایا کہ ان کے آپس میں کوسچن کرنے کے لیے اٹھایا, نہیں, اٹھایا پر ایک دوسرے سے تاکہ وہ پوچھیں کہ بھئی کیا ہم کوئی بات چیت کریں گے. کوئی اصل چیز اس کے اندر جو معجزہ ہے وہ تو مدت کا ہے نا, کہ کتنا ٹائم گزرا ہے, تو اس کے گرد یہ سٹوری. ورنہ تو ایسے تو کوئی جا کر سو جائے اور اٹھ جائے, صبح کا سویا شام کو اٹھا, وہ تو کوئی ہر ایک ہی ہو ہی رہا ہے یہ دنیا کے اندر. تو وہ معجزہ کیا بنتا ہے, وہ ٹائمنگ. تو وہ ٹائمنگ کا ایک دوسرے سے سوال کریں گے. تو اب یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے ہم نے ان کو اٹھایا, یعنی اب یہ نہیں کہ کوئی آؤٹ سائڈر آیا, اس نے کوئی گزر رہا تھا وہ اندر اچانک سے آ گیا, اس کو نہیں پتا تھا وہ, نہیں, کوئی باہر سے آنے والی چیز نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے جب چاہا ان کو اٹھایا, لیکن جب چاہا تو ان کو آرام کی نیند سلا دیا کہ پاس سے گزرنے والوں کو بھی کوئی نہیں پتا چلتا اور وہ گزر جاتے. اتنے 300 سال میں کروٹیں بھی اللہ نے بدلا دی, سب کچھ, وہ سوئے پڑے ہیں. لیکن جس وقت ان کو اٹھانا تھا تو اللہ تعالیٰ کا اذن ہوا, وہ اٹھ گئے 300 سال بعد. قال قائل منہم کم لبستم, کہنے والے نے, قالا واحد کا صیغہ ہے, یہ نوٹ کرتے رہیے گا. کہا کہنے والے نے, ایک ان میں سے کہنے لگا, کم لبستم, کتنا ٹھہرے تم, یعنی کتنی دیر ہم سوئے رہے ہیں. جیسے انسان اٹھتا ہے نا تو اس کے بعد وہ باہر دیکھتا ہے کتنی دیر ہوئی, خاص طور پہ دوپہر کو سو جائیں تو سمجھ ہی نہیں آتی, بھائی اب یہ رات سے ہم سو کے صبح اٹھے ہیں کہ پتہ نہیں شام ہی ہوئی بھی ہے. تو باہر دیکھتے ہیں, کبھی ٹائم دیکھتے ہیں, گھڑی دیکھتے ہیں, کتنی دیر سوئے رہے, نیچرل ایک بات بھی ہے. قالو, انہوں نے کہا. اچھا قالو جو ہے وہ کیا ہے, جمع کا. قالا ہوتا, الف بھی ساتھ ہوتا تو کیا تھا, تثنیہ. میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ عربک میں واحد تثنیہ اور جمع ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو ٹو سے ابب جو ہے وہ پھر جمع کا سیدھا, ٹو کے لیے الگ آتا ہے. تو قالو اس کا مطلب ہے کہ وہ تین یا تین سے زیادہ تھے, بار کیا دو سے تو زیادہ ہی تھے. انہوں نے کہا, لبثنا یوما او بعد یوم, انہوں نے کہا ہم تو ایک دن سو گئے یا پھر شاید آدھا دن سوئے میں, کیونکہ وہ صبح میں سوئے تھے, دن کا شروع کا حصہ تھا اور دن کا آخر کا حصہ تھا, یعنی صبح عصر کا ٹائم ہوگا تو اس وقت اٹھے ہیں وہ. تو اب انہوں نے کہا پتہ نہیں صبح سوئے اور ایک دن پورا ہم سوئے رہے ہیں, یا پتہ نہیں دن کا کچھ حصہ ہم سوئے رہے ہیں. اور سبحان اللہ, کیسی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ قیامت کے دن بھی جب لوگ اٹھیں گے اپنی موت سے تو وہ سوچیں گے کہ ہم کتنا دنیا میں ٹھہرے. لبثنا یوما او بعد یوم, ہی کہیں گے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. ویسے 300 سال سو کے بھی انہوں نے یہ کہا, اسی طرح پتہ نہیں ہزاروں لاکھوں سال سو کے بھی, موت مر کے بھی انسان یہی کہے گا. آج یہ بہت لمبی زندگی لگتی ہے لیکن یہ اتنی لگے گی, اس وقت انسان ریئلائز کرے گا. قالو, اب ایک تھرڈ گروہ, ایک نے تو پوچھا, دوسروں نے کہا ہم اتنا سوئے, تیسرا ایک گروہ تھا, انہوں نے کہا قالو ربکم عالم بما لبثتم, ہمارے رب کو ہی پتا ہے کہ ہم کتنا سوئے ہیں, اللہ کو پتا ہے. یعنی اب کچھ سمجھ نہیں آ رہی, گھڑیاں تو تھی نہیں, پتہ نہیں اللہ کو پتا ہے. اچھا اب یہ بات یہاں پر, اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ جب آپ کو کوئی چیز کا حتمی طور پہ نہیں پتا ہو, کنفرم نہیں ہونا کوئی چیز, تو ضروری نہیں ہے کہ انسان نے کچھ اس کے اوپر ضروری کہنا ہے کہ یہ جو ہاں میں نے اب میرے سے پوچھ لیا, اب میں نے کچھ نہ کچھ رائے ضرور دینی ہے, میں نے کچھ تبصرہ ضرور کرنا ہے, میں نے جواب ضرور دینا ہے, ورنہ نہیں. انسان کہے واللہ عالم, جیسے انہوں نے کہا اللہ عالم, ربکم عالم, تو اس طرح انسان ایسے جواب دے نہ کہ جس کا نہیں بھی پتا, جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ نہیں بھی پتا تو اللہ تعالیٰ کے اوپر بات کر دی, کس چیز کے اوپر بتا دیا, نہیں اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا, اسلام میں تو یہ ہے ہی نہیں ہے. یہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ بڑا گناہ بن جاتا ہے. اگر دین کے اندر انسان ایسی بات لگائے تو یہ گناہ کی بات ہے, یہ چھوٹی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور ایک جگہ پہ یہ بھی آتا ہے کہ جب ایک امام تھے, ان سے پوچھا گیا کوئی سوال, تو उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें बाद में जवाब दूंगा। गालिबन इमाम मालिक थे शायद। उन्होंने कहा मैं तुम्हें बाद में जवाब दूंगा। तो पूछने वाले ने कहा ये तो हल्का सा ही सवाल है, मेरा हल्का सा ही मसला है, मामूली सा है। तो इमाम मालिक गुस्से में आ गए थे और फरमाया बेटा इल्म में कुछ भी हल्का नहीं होता, हर मसला वजनी है। ठीक है, यानी ये नहीं है इतनी आराम से कि मैं तुम्हें जवाब दे दूं और कुछ उसमें गलती ना हो जाए। इमाम अहमद जो थे उनसे किसी ने पूछा कि ये हर्फ कैसे बोलते हैं, यानी हदीस में कोई था बात, तो उन्होंने फरमाया कि जो हदीस के अल्फाज के माहिर हैं उनसे पूछ लो। यानी मैं ये कहते हैं मैं ये नहीं चाहता कि मैं अंदाजा लगा के कोई बात कह दूं और गलती कर दूं। शाह भी उनके शागिर्द थे, तो उन्होंने उनसे कहा कि हमें शर्म आती है आप लोगों को बार बार ये कहते हैं मुझे नहीं पता मुझे नहीं पता। लोग भी कहेंगे कैसे इनके उस्ताद हैं जिनको कुछ आता ही नहीं है। तो कहने लगे, कितनी उन्होंने जबरदस्त बात की, फरमाया फरिश्तों ने तो शर्म नहीं की थी जब अल्लाह ताला ने उनसे सवाल किया था कि इन असमा के ना इन चीजों के नाम बताओ, तो उन्होंने आगे से कहा था सुबहानक ला इल्मा लना, हमें नहीं पता है रब। तो उन्होंने तो शर्म नहीं की थी, भी मुझे क्यों शर्म आए। तो फिर हम क्यों इतनी आसानी से फतवे देने बैठ जाती हैं लोगों को, जो ऐसे लगता है कि हर कोई माहिर है और हर फील्ड में माहिर है, हर कोई अपनी अपनी बता रहा है, जिस मसले का भी पूछ लो ना उसका हमारे पास जरूर जवाब होता है। हम कहते हैं भी ऐसे अगर हमने भेज दिया किसी को तो फिर वो कहेगा कि इसको आता ही नहीं है, तो मैं तो जरूर ही कुछ बता के भेजू। इसी तरह आप देखें कि आप सल्लल्लाहु से किसी ने पूछा कि कोई बुरी जगह सबसे दुनिया में कौन सी है, जमीन पे कौन सी सबसे बुरी जगह, तो आपसे सलम ने फरमाया मुझे नहीं पता। तो जिब्राइल आपसे सलम के पास आए तो आपने पूछा कि शहरों में सबसे बुरी जगह कौन सी है, जिब्राइल अलैहि सलाम ने फरमाया मुझे नहीं मालूम, मैं अपने रब से पूछ के बताऊंगा। उसके बाद जब वो आए तो उन्होंने बताया कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि शहरों में सबसे बुरी जगह बाजार है, जो अल्लाह ताला वो सबसे मबूज है, तो वह सबसे बुरे लगते हैं। तो इससे क्या पता चलता है हमें कि जिब्राइल अलैहि सलाम भी नहीं शर्माए कहने से कि मुझे नहीं पता, आपसे सलाम नहीं भी नहीं शर्माए कि मुझे नहीं पता, लेकिन हम क्यों शर्माते हैं कहने में कि मुझे नहीं पता, मैं पूछ के बता दूंगी या मैं तहकीक करके बता दूंगी या मैं पढ़ के बता दूंगी या मैं किसी इल्म वाले से पूछूंगी, ये क्यों नहीं हम कह देते, इसमें हमारी कोई जिल्लत नहीं है। तो इसलिए कभी भी इस तरह से ना करें कि बगैर इल्म के बातें बताते जाएं, बगैर इल्म के फतवे बताते जाएं लोगों को। उन्होंने कहा हमारा रब जानता है इसे बेहतर कि हम कितना ठहरे। और फिर उन्होंने इस चीज को नहीं समझा कि इसमें क्या बहस करने की जरूरत है, हम कितना सोए कितना नहीं सोए। यहां से पता चलता है ये भी है कि बेकार की चीजों के ऊपर अपनी एनर्जी नहीं लगानी चाहिए कि इंसान उसके ऊपर ही सोचता रहे, और जो जिसका कोई ताल्लुक नहीं है आगे भी आएगा, जिसका कोई अमल से ताल्लुक नहीं है। और ये भी हमें पता चलता है जब इंसान सो के उठता है उसको कोई शऊर नहीं होता कि मैं कितनी देर सोया। फबासु अहदकुम बिवरिक्कुम हाजिहि इल्मदीना। उन्होंने अब पहली बात उन्होंने कही कि एक ने कहा कि भेजो किसी एक को वर्क दे के, यानी जो सिक्का उनके पास था, तो जैसे इंसान के पास कोई चीज तो पड़ी होती है, जेब में कुछ तो पैसे होते हैं। अब इतने अमीर लड़के थे, ऐसे थोड़ी खाली जेबें होंगी उनकी, तो कुछ ना कुछ तो पैसे होंगे जैसे अमीरजादों के पास होते हैं। तो उन्होंने कहा कि किसी एक को भेजो चांदी का वर्क दे के कि वो जाए शहर की तरफ। इसका मतलब है कि शहर अलग से था, कहते हैं कोई 10 किलोमीटर के फासले पे था, तो मतलब ये गार हटके था शहर से। तो एक तो हमें ये बात यहां से पता चली कि इतना अरसा सोए रहे और भूख नहीं लगी, लेकिन जब उठे हैं तो पहली बात क्या कर रहे हैं कि हमें भूख लगी है। इससे ये भी पता चलता है कि जब वो घर से निकले थे तो साथ कुछ उन्होंने रखा नहीं था, अगर रखा होता तो फिर अपने थैलों को देखते। और ये भी हमें पता चला कि उनके हाल हुलिए कपड़ों पे या उनके फेसेस पे या उनके फेशियल हेयर कोई हो या उनके कोई बालों पे या किसी चीज पे कोई भी नहीं फर्क पड़ा था, या उनकी एज में कोई फर्क पड़ा था। अब देखिए बाहर दुनिया में नस्लों की नस्लें खत्म होके नई नस्लें आके वो भी मर गई नहीं है और अगली भी आ गई नहीं, और ये यहाँ पे बिल्कुल ठीक बैठे, कुछ भी डिफरेंस नहीं था। वरना उठ के कहते तुम्हें क्या हो गया, अरे तुम्हारे कपड़े इतने क्यों मैले हो गए, या तुम्हारे कपड़े क्यों, देखिए इंसान के कपड़े भी तो गल के खत्म हो जाएंगे, इंसान ही थोड़ी सिर्फ गल के खत्म हो जाता है, उसके कपड़े भी खत्म हो जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। 300 साल कोई छोटी बात है, कोई 10-20 साल की थोड़ी बात हो रही है, 3 सेंचुरीज गुजर चुकी हैं। तो इसका मतलब ये भी कुछ फर्क नहीं पड़ा, और ये भी हमें पता चलता है कि वो आगे बात आएगी उसका, चलिए फिर वहीं पे मैं आपको बताऊंगी कि काला कालू और कालू से हमें क्या पता चलता है। तो अब ये दूसरी एक और हमें बात पता चली कि ये जो एक उनमें से कह रहा है कि तुम भेजो किसी को, तुम में से कोई जाए और लेकर आए, इसका मतलब सारे ही नहीं चल पड़े। और ये भी हमें पता चलता है कि इसमें कोई आर नहीं है कि जब आप मिलके कहीं पे किसी जगह पे हो तो कोई एक को कोई काम असाइन कर दिया जाए, मतलब है कि आप जाएं और आप जाके ना कोई ये काम करके लाएं, आप ये चीज उठा के लाएं। तो वो कहता है हाँ मेरी मुझे इस काम के काबिल समझा, खुद क्यों नहीं चले जाते और मुझे कह रहे हैं कि करो तुम काम। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा उनमें से किसी ने कि लोग मुझे क्यों भेज रहे हो, मुझे मौत के मुंह में डाल रहे हो, मुझे कोई वहां पे पकड़ लेगा और खुद यहाँ पे आराम से बैठे हैं। नहीं, इससे पता चलता है कि जो इस्लामिक ब्रदरहुड ना सब एक है, सब एक है। जहां पे भी आप कभी वॉलंटियर करें तो इस चीज को अपनी शान के खिलाफ ना समझे कि मुझे क्यों ये काम कह दिया गया, मैं क्यों करूं, खुद जाए ना, खुद करें ना, और मुझे ये छोटा काम पे मुझे लगा दिया, खुद बड़े काम कर रहे हैं। उनमें से किसी ने नहीं ऐसे कहा, भी वारिक कुम्हाजी इस चांदी का सिक्का ले जाओ। और इससे पता चलता है कि पैसे भी सबके सांझे ही हैं, उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई सारे डालो अपने पैसे फिर हम करेंगे, मैं क्यों तुम्हारा खाना लाऊं, सब अपने अपने खाने के पैसे दें। ठीक है, पता चलता है कि वो देखिए उनके दिल कितने मिले हुए थे ना, दिलों में एक दूसरे के लिए कितनी मोहब्बत और एक दूसरे के साथ केयर और ये मांग। फलयंजुर अय्युहा अज़का तआमन, फिर चाहिए कि जो भी जाए वो जाके देखेगे वहां पे कौन सा है जो अज़का है, पाक है खाने में। यानी उठ के ये नहीं कहा कोई एक जाए जो भी मिल जाए ना ले आना, लेकिन हम क्या कहते हैं जो मिल जाए ले आना, इस वक्त तो बस हमें खाना है, अपनी बस अपनी जान बचानी है, जो मिल जाए जो पहली चीज मिल जाए वो ही उठा के ले आना, ऐसे नहीं कहा। वहां पे भी उनको इस चीज की फिक्र है कि हमने पाकीजा खाना खाना है, और पाक खाने से उलमा कहते हैं कि असल में सारे वहां पे मुशरिक थे, कोई कोई होता था जो अल्लाह के नाम पे जिबा करता था और बुतों के नामों पे और इस तरह शिरकी अकायद के ऊपर वो जो चीजें करते थे ना, तो वो वाला खाना ना लाना, बल्कि वो जो अस्का हो, अस्का से मतलब है हलाल हो, पाक हो, तय्यब खाने को कहा गया। अल्लाह तआला ने अपने नबी को भी फरमाया अब तय्यब खाएं, ईमान वालों को भी तय्यब खाने, सिर्फ ये नहीं कहा हलाल खाएं, पाक। तो जो ज्यादा पाकीजा है खानों में वो लेकर आना, यानी चेक करके लेकर आना, हराम वाला वाला खाना नहीं। तो देखिए इससे ईमान वाले का आपको पता चलता है कि जिस जो ईमान वाले होते हैं ना, वो अपनी खुराक का भी कितना ख्याल रखते हैं कि हमारे अंदर कोई हराम चीज ना जाए। ये नहीं कि आप इंग्रेडिएंट पढ़े ही नहीं, धड़ाधड़ खाते जा रहे हैं, कुछ भी जो शेल्फ पे पड़ा हुआ है वो खा रहे हैं, हम उस चीज की परवाह ही नहीं कर रहे कि हराम है कि हलाल है। आप सब ने फरमाया था ना कि एक वक्त ऐसा आएगा इंसान को परवाह ही नहीं होगी कि उसके पास जो कुछ आता है वो हलाल है या हराम है, यानी बस चाहे वो माल ही है चाहे कमाई है, कि यानी कमाई में भी ये नहीं देखना, बस आना चाहिए, हराम ही चाहे हो बस आना चाहिए मेरे पास, कहीं से भी लूटो खसूटो मांगो कुछ भी करो, होना चाहिए बस मेरे पास। तो सहाबे काफ की ऐसी सोच नहीं थी। अरे ये ईमान की एक निशानी होती है कि इंसान केयरफुल होता है अपनी कमाई के बारे में, अपने खाने के बारे में, और उसकी तहकीक करके करता है, यानी अब तुम देख के लाना। हालांकि क्या ये हालात थे कि जिसको कहा जाए कि अब देख के लाना, ये तो वो हालात है कि बस वो भाई कुछ भी करो, अल्लाह माफ करे किसी के ऊपर इतने मुश्किल हालात हों कि उनको तो बड़ी पता है कि बाहर क्या हुआ हुआ है, इतने मुश्किल किसी के ऊपर हालात हों कि बाहर सारे जान के दर पे हैं, लोग ढूंढते फिर रहे हैं, उस वक्त भी फिक्र ये पड़ी हुई है। और हम यहाँ पे अगर कभी कोई कह दे कि भाई आपने हलाल खाना है तो फिर हम कहते हैं वो बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट है। और फिर वो कहते हैं फल यातिकुम रिस्क मिन, बस चाहिए कि वो ले आए रिस्क में से, यानी इतना नहीं कि सारा ही उठा के ले चलो, ट्रेयों की ट्रेन लेकर आ रहे हैं, उसे भी लोगों को शक पड़ जाएगा, बल्कि उसमें से कुछ लेकर आना, तो थोड़ा सा ले आना, ठीक है। अच्छा, और वल या तलब, और चाहिए कि नरमी करे, या उसने तदबीर करे, या लतफ के कई माने हैं, लुत्फ से है ना, लतीफ होना, केयरफुल होना भी, कर्टियस होना, नाइस होना, नॉर्मल नॉर्मल एक्ट करना, ध्यान रखना, ये सारे ही माने इसके अंदर आ जाते हैं, क्योंकि नरमी के साथ बात है ना, जेंटली बिहेव करना, इसलिए कि एक बार दफा लोग जो है ना थोड़ी थोड़ी बात पे गुस्से भी आ जाते हैं, तो वो सारा अगर ऐसा करेंगे तो फिर तो मामला खराब हो जाएगा, लोगों की खामखा की तवज्जो होगी, कहाँ पे झगड़ा हो रहा है, भाई तुमने ये क्यों नहीं दिया मुझे खाना, वो क्यों नहीं दिया, तुमने कैसा खाना दे दिया, तो जेंटल रहना इतना के ऐसे के किसी के साथ कुछ आर्ग्यूमेंट ना हो, ठीक है, ताकि तवज्जो ना किसी की वो हो तुम्हारी तरफ पड़े। और ये इसलिए इतना मोटा सा लिखा जाता है हमारे मुसहफ में, क्योंकि ये कुरान पाक के जितने हरूफ है ना, हरूफ उनके अंदर ये मिडल आ गए, कुरान पाक को पूरा का पूरा हाफ में अगर डिवाइड किया जाए हरूफ के एतबार से, तो इस लफ्ज के अंदर जो ता है, ता वलियत लतफ की ता, ये ते जो है ये बिल्कुल मिड में है, फर्स्ट सेक्शन के आखिरी जो हर्फ है वो ये ता है, और सेकंड सेक्शन का जो सेकंड निस्फ है कुरान का, उसका फर्स्ट हर्फ ये है लाम है, ठीक है। एक तो ये भी बात हो गई इसमें, लेकिन इसमें देखें पूरी जिंदगी में एक लुत्फ और करम करने, लुत्फ और नरमी करने की बात है, कुरान के अहकाम पहुंचाने हैं या कुरान पाक की तबलीग करनी है, सारे के अंदर नरमी, उसने खुल्क में भी नरमी एक बहुत बड़ी सिफत है, जिस वो अल्लाह ताला दे दे उसके साथ भलाई का इरादा करता है तो उसको नरमी दे देता है, जिस खानदान में नरमी हो तो समझ लें इनको अल्लाह ताला ने नरमी की नेमत दी हुई है, और नरमी से जो काम आपसे सरम ने फरमाया हो जाते हैं वो सख्ती से नहीं हो सकते। तो ये मिड में आना इस वर्ड का, एक उलमा ने इसको भी कहा कि देखें ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा लेसन है, ठीक है, इसमें भी लेसन है। इस आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा नरमी जिसमें पाई जाती है तो वो चीज़ खूबसूरत नरमी की वजह से खूबसूरत कर दी जाती है, और जिससे निकाल दी जाती है तो उसको बदसूरत कर देती है, यानी आपकी ब्यूटी जो है ना आपकी नरमी में है। अगर आप समझते हैं कि मैंने खूबसूरत लगना है तो सिर्फ मेकअप करने से नहीं खूबसूरत इंसान लगता, नरमी आपकी ब्यूटी है हदीस के मुताबिक, और सख्ती जो है ना बदसूरती है, ठीक है। कुछ लोग इतने झगड़ालू से एग्रेसिव से होते हैं, मामूली मनमी बातों पे बदजुबानियां जोर आजमाइयां करने शुरू होते ताकि लोग हमें बहुत कुछ समझे, और नरमी से अगर हमने कुछ किया तो उससे क्या फायदा होगा, उससे तो कोई मेरी बात ही नहीं सुनेगा, नहीं। और बार दफा हम अपने इन्हीं रवैयों की वजह से लोगों को इस्लाम से दूर कर देते हैं, और ये बहुत बड़ा गुनाह है कि हम अपने रवैयों से अगर इस्लाम से दूर करें, क्योंकि हार्श हो जाते हैं हम लोगों के साथ, और जितना दीन के अंदर आते हैं बाज लोग उतने ही हार्श होते हैं। आपने देखा एक मिशनरीज को ये कैसे काम करते हैं, वाकई उन्होंने इसके ऊपर अमल किया, इतना वो जेंटल होते हैं, इतने नरम होते हैं कि इंतहा से, और फिर जब वो तबलीग करते हैं इनकी यही चीज तो चल जाती है। और हम दीन में अक्सर अक्सरियत ऐसा होता है, सब नहीं लेकिन अक्सरियत ऐसी होती है कि जब दीन की तरफ जितना आती है इतने सख्त हो जाते हैं, घर वाले भी उनसे डरने लगते हैं, वो समझते हैं हमने बस अब दीन हमने पढ़ क्या लिया, समझ क्या लिया, हम तो बस आज सारी दुनिया को हमने सीधा करके रख देना, तो ये चीजें नहीं होती। नरमी, चाहे वो नरमी घर वालों के साथ हो, चाहे बाहर वालों के साथ हो, चाहे मुआशरे में हो, कुलीग्स के साथ हो, नरमी वाला मामला कि लोग आपको इससे पहचाने। और वलिय तलत का मतलब एक माना हिकमत भी किया गया कि लोगों के साथ हिकमत के साथ रहना, हिकमत के साथ चलना, जैसे जाते वक्त किसी को इंस्ट्रक्शन दी जाती है ना, तो उस बताया जा रहा है कि तुमने ऐसे करना है। और वला युशइरन्ना बिकुम अहदा, ये भी ना हो कि तुम्हारे बारे में तुम के खबर दे तुम्हारे बारे में किसी एक को कि तुम में से जो जाए वो ऐसा भी ना कुछ काम करे कि या ऐसी भी कोई बात ना करे कि तुम हमारे बारे में भी किसी को पता चल जाए। तो लोगों को ऐसी तवज्जो ना दिलाना, ठीक है। अब ये देखिए ना, ये पता चल रहा है कि वो सारी एहतियाती तदाबीर कर रहे हैं, प्रिकॉशंस ले रहे हैं। हालांकि क्या उनको अल्लाह के ऊपर भरोसा नहीं था कि अल्लाह ताला है ना हमारे पास, बस हमें क्या फर्क पड़ता है, हम कलमा पढ़ने वाले, तकबीर, अल्लाह अकबर, चलो निकलो। ये जो जज्बाती चीजें हैं ना, ये इस तरह की हमारे दीन में ये चीजें ऐसे नहीं है जैसे हमने बना लिया। बस जज्बात ही जज्बात है, अकल कुछ नहीं इस्तेमाल करना, अकल पीछे छोड़ देते। हम खून का आखिरी कतरा बहा देंगे, हम फलाना कर देंगे, और जब वक्त आता तो कुछ भी नहीं करने वाले होते। बातें करने सिर्फ ये मुनाफिकीन का काम होता था। हमारे से बातें जितनी मर्जी करा लो, नारे लगवा लो। आज हम उम्मत मुस्लिमा में, खास तौर पे हमारे सब कॉन्टिनेंट में, अगर आप देखें मुसलमानों में सिवाय नारों के और कुछ नहीं रह गए। नारे ही लगाते रहते हैं, नारे लगा लगा के खुश होते रहते हैं, जिंदाबाद फलां, मुर्दाबाद फलां। ये क्या है? और जो तदबीर करनी है वो नहीं है इख्तियार करनी है, जो कदम उठाना है वो नहीं करना। एक्शन कुछ भी नहीं है, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड। वो भी अपने घरों में बैठ जाते, लेकिन क्या वह एजुम, वो अलग हुए, उन्होंने स्टेप लिया, कुछ कुछ शो किया अल्लाह के रास्ते में, कुछ कुर्बानी दी अल्लाह के रास्ते में, कुछ कदम उठाया उन्होंने। वो नारे मारते रहते वहां पे, जिंदाबाद मुर्दाबाद के क्या होना था। तो ये एक बिल्कुल ऐसी ना बेकार बातें लगती हैं, बहुत सतही बातें, बहुत खोखले हैं हमारे नारे, इनके पीछे कुछ नहीं है। हम कहते हैं लेकिन हमारे अंदर कोई सिंसेरिटी नहीं होती, और जिनके अंदर सिंसेरिटी होती है ना, खुलूस होता है, इखलास होता है, बाकी कुछ करने वाले तो उनको बातें करने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, फिर हमें ये भी पता चलता है ना कि देखिए जब अल्लाह पे भरोसा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब मैं अपनी कोई तदबीर ही ना इस्तेमाल करूं, कोई हिफाजत का इंतजाम ना करूं। इतनी एहतियाती तदाबीर उसको बता रहे हैं तो क्यों बता रहे हैं? वलिय तलत, फिर कह रहे हैं कि अयुहाज का तामन, फिर कह रहे हैं वला युशीरन्ना बिकुम अहदा, देखो किसी को पता ना चलने पाए हमारे बारे में ना, पता कोई ऐसा काम ना करना। क्यों इतना कर रहे हैं? क्या वो बहादुर नहीं थे? क्या उनको अल्लाह पे भरोसा नहीं था? देखें, यह हमें चीजें ये बताती हैं हमें कि हमारे दीन का क्या मिजाज है। अब आप यहां पे देखें, इससे हमें पता चलता है कि अल्लाह पे भरोसा करना एक बात है, लेकिन अल्लाह पे भरोसा करने का मतलब ये नहीं कि आप एहतियाती तदाबीर ही ना करें। अभी अभी हमारे ऊपर कोविड गुजरा है, ठीक है, लोगों को अगर कह दें मास्क पहनने को, हमें नहीं, वो तो इतना बुरा मानते, हम नहीं मास्क पहनेंगे। मास्क पहनने से क्या होता, हमारा अल्लाह पे भरोसा है। अगर उनको कहेंगे आप डिस्टेंस पे रहें जी, आप गले ना मिले, हाथ ना मिलाएं, उसके ऊपर भी बुरा मानते, क्यों हमारा अल्लाह पे भरोसा नहीं, हम तो मिलेंगे, कुछ नहीं होता हमें, अगर अल्लाह ने बचाना होगा तो फिर तो ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको फरमाया ना एहतियात करने को, हिफाजती तदाबीर करने को, उसमें हमने बहादुरी दिखानी, उसमें हम लड़ने मरने को खड़े हो जाते। इस्लाम जो है ना इत्तदाल का दीन है ना, ऐसा आप करें कि एहतियात कर रहे हैं और अल्लाह पे भरोसा नहीं, ना ऐसा करें कि अल्लाह पे भरोसा लेकिन एहतियात नहीं करें। क्यों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहद के अंदर दो जिरे पहन के उहद की जंग में शामिल हुए थे? क्या उनको अल्लाह पे भरोसा नहीं था? उस सोचे क्यों उन्होंने जिरे पहनी थी, कह देते कि मुझे जिरे पहनने की क्या जरूरत है, मरना हो तो ऐसे ही मर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं किया। तो एहतियात अपनी जगह है और अल्लाह पे भरोसा अपनी जगह, दोनों ही चीजें जरूरी हैं। हम तारजन बनने की कोशिश करते हैं कि और दिखाने की कि मेरा ईमान कितना बड़ा है, हमें तो कुछ परवाह ही नहीं है। लोग पीटते रहे, हुकूमतें पीटती रहे कि भाई ये कर लो, ये एहतियात कर लो, ये कर लो, नहीं हमने सुनना ही नहीं, हम ईमान वाले ही बहुत बड़े हैं। हमारा दीन तो हमें ऐसी चीजें नहीं सिखाता। तो ये है जो रास्ता हमें इख्तियार करना चाहिए। और फिर हम ये देखते हैं कि लुत्फ करम की बात आई, तुम्हें किसी के बारे में, किसी को तुम्हारे बारे में, हमारे बारे में खबर ना हो जाए, इसकी बात आई। इसमें भी खैर ख्वाही है कि उसको पूरी तरह यानी एजुकेट करके, नसीहत करके भेजा जा रहा है, जो जिसने भी जाना है कि देखो तुमने इन इन चीजों का ख्याल रखना। और इसमें कोई हर्ज नहीं है कि इंसान अपने साथियों के साथ खैरख्वाही करते हुए उनको अच्छी नसीहत भी करे। और ये भी, ये बहुत बड़ा एक पॉइंट यहाँ पे और मिलता है कि देखें, किसी भी हालात में रहते हुए ना, कोई शहीद होने की जरूरत नहीं कि इंसान खुद अपने आप को ऐसे खतरे के अंदर डाल के कहे कि बस शहादत मिल जाएगी ना, क्या फर्क पड़ता है, बस मैं तो शहीद होने जा रहा हूँ, मरने जा रहा हूं, और मैं तो ऐसे काम ही करूंगा, लोग मारे मुझे, मुझे नहीं परवाह इस चीज की। नहीं, बेवकूफियों के साथ बेवकूफियां करके, बिल्कुल यानी ऐसी फुलिश हरकतें करके, और जरूरत नहीं है कि इंसान जो है अपनी तरफ तवज्जो करा के और अपनी जान से जाए। ठीक है, अल्लाह ताला ने यही हमें सिखाया है कि हम अकलमंदी से काम लें, समझदारी से काम लें, और ऐसे बेवकूफाना कदम ना उठाएं जिससे कि हम दूसरों को इंस्टिगेट करें और उनको उभारें कि वो हमें कुछ कहें, और ताकि हम फिर एक शहीद हो जाएं। ये उन मामलात में नहीं कहा जा रहा जहां पे अल्लाह ताला के हुक्मों को तोड़ने की बात आ जाती है, उनमें नहीं कहा जा रहा कि कल को आप कहेंगे ओहो हम अगर हिजाब लेते हैं तो हमारे अपनी तरफ अटेंशन कराएंगे, इसलिए सब उतार दो। नहीं, ये नहीं कहा जा रहा। ये मगर खाम खा की एक बातों के अंदर के खुद ही से कुछ ऐसी बातें करना जिससे लोगों को अपनी तरफ तवज्जो करा के और उसके बाद खुद को खतरे में डालना, इसकी जरूरत नहीं होती। इन्ना हम इन यधरू अलैकुम यरजुमू को, देखो ये भी फिर कह रहे हैं, सुनो अगर बस्ती वालों ने गलबा पा लिया ना तुम पर, तो वो तुम्हें पत्थर मार मार के मार देंगे। और युईदुकुम फी मिल्लतिहिम, या वो लौटा ले जाएंगे तुमको अपनी मिल्लत में, तुम्हें वापस लौटा के ले जाएंगे। किसमें? अपनी मिल्लत मतलब अपने दीन में, क्योंकि उस वक्त मिल्लत क्या होती है, जो उनका नेशनल, जो उनकी आइडेंटिटी होती है, जो उनकी शनाख्त होती है, कौमी शनाख्त, तो उस वक्त तो उनकी दीन ही उनकी कौमी शनाख्त होती थी, इसीलिए उसको मिल्लत कह रहे हैं। तो अगर तुमने ऐसा किया, अगर उन्होंने तुम्हें पकड़ लिया ना, तो वो तो फिर तुमको, यानी एक सबको बता रहा है कि देखो बिल्कुल ऐसी कोई हरकत ना करना, ये ऐसा करेंगे हमें या तो मार देंगे जान से, या फिर हमें प्रेशराइज इतना करेंगे कि हम अपना दीन छोड़ के उनके दीन में शामिल हो जाए। अच्छा, ये इसमें बहुत बड़ा एक लेसन है, और वो लेसन ये है कि वो ये नहीं कह रहे लो आज तक तो हम बच के आ गए, हम तो आगे भी बचते रहेंगे, जिंदाबाद फलां ये, हम छोड़ो सबको, हम किसी से डरते नहीं, हमें कोई मजबूर नहीं कर सकता, हमें कोई नहीं झुका सकता, हम झुकने वाले नहीं, हम मरने वाले मिटने, ऐसा कुछ नहीं कह रहे। इसलिए कि इंसान को कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए कि जी मुझे नहीं कोई हिला सकता, मेरा नहीं। आप सल्लम खुद दुआएं मांगा करते थे, या मुकल्लिबल कुलूब सब्बित कल्बी अला दीनिका, वो कहता है मुझे किसने हिलाना, मुझे कौन सा कोई हिला सकता है, मुझे कौन सा कोई बदल सकता है। हमें क्या सिखाया? हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो कभी भी ये नहीं हो सकता था, लेकिन हमें क्या सिखाया? नेवर बी ओवर कॉन्फिडेंट कि हम, हमें कुछ नहीं फर्क पड़ता। तो हमेशा अपनी एहतियात करनी चाहिए, कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, कभी अपनी बेवकूफियों से अपनी को खतरे में ना डालें। और इसके अंदर ये भी सिर्फ जान के खतरा नहीं बात हो रही, एक एक ये भी एक मिसाल समझे कि ईमान को जहां पे खतरा हो वहां पे अपनी बेवकूफियां ना करें। जैसे आपको मना किया जाता है भी आप फलां फिल्म ना देखें, उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें, आप ये फलां इस मलऊन की किताब ना पढ़ें जिसने ये किताब लिखी है आप सलम के बारे में और उनकी शान में गुस्ताखियां की, आप ये वेबसाइट ना खोलें। और आप कहते हैं नहीं जी हमारा तो ईमान इतना, हम क्यों ना खोले, हमें कोई नहीं हिला सकता, हम तो खोलेंगे, मैं तो देखती हूँ। अब उसके बाद देखती देखती क्या हो जाता है, उसके बाद अपने ईमान में ही डाउट आने लगते, नहीं हम तो इतने मजबूत है, हमें नहीं कुछ होता। नहीं, ऐसे करना चाहिए।
उसके बाद फिर हम परेशान होते हैं, फिर हम जाके क्वेश्चंस करते हैं टीचर से, उलमा से, कि अब इसका जवाब दें, हमारा तो ईमान खत्म होने लगा, हमारा तो ईमान कमजोर हो गया, अब हम क्या करें, हमें तो शक को शुभात आने लगे। तो क्यों आप उसके अंदर अपने आप को डालते हैं? तो चाहे ईमान हो चाहे जान हो, इसको ऐसे ही खाम खा खतरे में ना डालें कि आप शौकिया ही, बस शौक है आपको और आप ऐसी चीजों में रिस्क ले रहे हैं। और बाज लोग इन चीजों के अंदर आ भी जाते हैं और फिर वो दीन ईमान से भी जाते रहते हैं, और फितना दिज्जाल में भी ऐसी चीजों के करीब भी नहीं जाना, करीब भी नहीं जाना, क्योंकि जो करीब भी है जो दिज्जाल के सामने गया उसका ईमान चला जाएगा। ये नहीं कहा गया कि वो बड़ा अगर अकलमंद होगा तो फिर नहीं जाएगा, अगर बेवकूफ होगा तो चला जाएगा, जिसका ज्यादा ईमान होगा वो नहीं जाएगा, जिसका कम होगा वो मुनाफिक का चला जाएगा। नहीं कहा कि वो कोई ईमान वाला भी उसके सामने जाएगा उसका ईमान चला जाएगा। क्यों फिर हम अपने आप को रिस्क में डालें? तो खामखा ऐसी फितनों में खुद को ले जाके ना डालें, ठीक है? वलन तुफलिहु इज़न अबदा, और अगर उन्होंने ऐसा कर दिया तो तुम कभी फला नहीं पा सकोगे, इसलिए कि जो शिर्क है वो तो मौत से भी बदतर चीज है। जो शिर्क पे मर गया तो खुसराने मुबीन है, इतना बड़ा खसारा है, फिर उसके बाद कभी फला नहीं पा सकता वो। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि कोई बात नहीं, अगर हमें मजबूर करके इन्होंने शिर्क करा भी लिया तो कोई बात नहीं है, फिर क्या हुआ, फिर तो अल्लाह ताला ने माफ ही कर देना। इसलिए क्योंकि उनकी उम्मतों के अंदर ये चीज नहीं थी। उलमा कहते हैं कि उम्मत मुहम्मदिया ऐसी है कि इनके ऊपर अगर जबर करके जबरदस्ती कोई इनको कलमा कुफर कहला दे तो अल्लाह ताला माफ कर देता है, अगर दिल में ईमान है तो। इन पिछली उम्मतों ने तो बहुत बहुत कुर्बानियां दी, जैसे फिरौन की जो बेटी की मशाता थी, और ये भी जैसे ये है। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। तिलावत सुनें।
وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبداً